शांति। आदरणीय प्रातः सूर्य भाई जी, आप सभी जानते हो, अनुभव करते हो, आपके एक एक शब्द दिलों को छूने वाला, जीवन भर याद रहने वाला, शक्तियों से भरपूर और अनेक आत्माओं के जीवन को रोशन करने वाला, अनेक आत्माओं की समस्या का समाधान करने वाले ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय भ्राता जी का हम बहुत 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 दिल से स्वागत करते, अभिवादन करते, अभिनंदन करते। आप वो विशेष आत्मा हो जिन्होंने बाप दादा ने स्वयं साकार में आह्वान करके यज्ञ में प्रकट किया है। आपका वो एक अनेरा अनोखा अद्भुत परिचय है जो मुझे देते हुए बहुत खुशी होती है कि जब यज्ञ के अंदर भंडारे में योगी बच्चे की आवश्यकता थी, तब साकार बाबा ने कहा था कि मैं ऐसे योगी बच्चे का आह्वान करता हूँ जो योग युक्त होकर के भोजन बनाए, वो योगी बच्चा जो सारे भंडारे को संभाले और कुछ ही समय में आपका अलौकिक जन्म हुआ, आप भगवान का आह्वान हो। तो ऐसे आदरणीय भ्राता जी का दिल से स्वागत करते हैं और आज हम सुनेंगे श्रेष्ठ स्थिति का स्वमान के अभ्यास से श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण। ओम शांति।
ओम शांति। सभी खुश हैं मधुवत में आकर? बहुत खुश। मौका ऐसा तो कभी मिलता नहीं था। सबसे सुंदर स्थान इस सृष्टि का है या नहीं? जब रशिया का ग्रुप हमारे पास कभी आया था, वाइब्रेशंस चेक करने वाला एक साइंटिस्ट, उसने बताया था कि बाबा की झोपड़ी से और शांति स्तंभ तक की रोड जो है ना, 12-15 फुट रोड बना दो, इसमें संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, ऐसे और कहीं नहीं है। हम तो जानते ही हैं क्यों, ब्रह्मा खुद यहीं घूमे हैं, यहां से वहां। तो एक सर्वश्रेष्ठ स्थान जो आने वाले समय में संसार के लिए लाइट हाउस बनेगा, बाबा के शब्दों में जादू की नगरी बन जाएगा, उस स्थान पर आप सभी आए हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। मुझे तो टॉपिक याद नहीं था, अभी सुना मैंने क्योंकि मैं बाहर था, बताया होगा मुझे भूल गया, पर ये टॉपिक बहुत ही सुंदर है। जब ये टॉपिक मेरे सामने आता है तो मुझे साकार बाबा की मुरली से एक बात याद आती है। लिख लेना, आप इशारे में लिख लेना, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ वैसी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। बहुत ही सुंदर बात है। मैं भी जब यहाँ आया अभी क्लास में, तो मैंने भी आप सबको इसी नजर से देखा कि देवकुल की महान आत्माएं आई हैं, अब इनका और श्रृंगार कर देना है। बाबा रोज श्रृंगार करता है, हम भी जो श्रृंगार करेंगे वो भी बाबा का ही है। तो सोचो बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखता होगा। किसी होल की बात सुना दूं, मैं जब स्वमान की बातें सुनता था बाबा की, शुरू से ही बाबा अव्यक्त हुए और शुरू से ही स्वमान प्रारंभ हुआ। साकार मूल्यों में ये शब्द ज्यादा नहीं आया, नशा, ईश्वरीय नशा ये आता था, स्वमान कभी आया। तो मैं बहुत अच्छे अभ्यास तो करता था, यहीं बाबा आए थे 74 में ये हॉल बना था, यहीं बाबा आए, हम बिल्कुल पास बैठते थे जैसे आप सब आगे वाले बैठे हैं, कभी कभी आगे ही बैठे होते थे, दादियां इधर, भाई लोग इधर, मधुबन वालों से ही मिलने आते थे कभी कभी बाबा, हम बिल्कुल पास, ये स्टेज नहीं थी, ये तो अभी बनी। तो मैं सोचा करता था सामने बैठकर, बाबा की मुरली की पहली लाइन स्वमान से प्रारंभ होती थी, आप जानते हैं, आज बाप दादा अपनी महान आत्माओं को देख रहे हैं, होती थी ना ऐसे। मैं सोचता था, आप भी सोचना आज, कि भगवान यहाँ बैठकर सोचता तो अवश्य होगा कि ये कितने महान हैं, परंतु पता नहीं इनकी समझ में कब आएगा। मैं अपने को ट्रेंड करता था ऐसे, सचमुच जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगा हम क्या हैं, उस दिन हम इस संसार में धरती पे नहीं चलेंगे। सोचो बाबा ऊपर बैठकर हमें किस नजर से देखता है। ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, सोचता होगा नहीं, जिनके दर्शन करके भक्त आनंदित हो जाते हैं, अनेक लोग जिनके मंदिरों में मनोकामनाएं लेकर जाते हैं और पूर्ण करके आते हैं, ये वही हैं जिनकी ओर द्वापर युग से संसार प्यासी नजरों से देखता आया है। सोचता होगा ना, हम भी सोचें जरा, हम भी सोचें। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही पीछे, तुम विजयमाला के ऐसे मन के हो, मुझे बहुत भा गई थी ये बात, तुम विजयमाला के ऐसे मन के हो जिन्हें स्मरण करते करते भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास समस्याएं कहाँ ठहरेंगी, तुम्हारा नाम जब कई समस्याएं दूर होती हैं भक्तों की, सोच लो तुम कौन हो। तो एक्चुअली समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें समझते हैं, हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। ये भी बाबा का ही महावाक्य है, बातें बड़ी नहीं होती तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। हम बहुत बड़े हैं, सृष्टि के पूर्वज, साथ साथ आप जरा अपने को लेते चले इस फीलिंग में, सृष्टि के पूर्वज हैं हम, पालना करने वाले हैं हम, हैं? कौन कौन बैठे पूर्वज यहाँ? अच्छा, सृष्टि की पालना करने वाले बड़े, जो बड़े हैं, अब चिंतन कर लो, जो बड़े हैं वो छोटी बातों में नहीं रहते, जिनको बड़े काम करने हैं उनके विचार भी बड़े होने चाहिए, जिनके विचार छोटे हैं वो बड़े काम नहीं कर सकते। हम बहुत बड़े हैं, हमारे काम भी बड़े हैं, संसार की पालना करना। इसलिए बाबा कहते थे, अब वो समय आ रहा है, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की तुम भी संसार की पालना करो। बड़े हो गए हम, इस नजर से भगवान हमें देखता है, मैंने इनका श्रृंगार किया है, बहुत बड़े बना दिया है इनको, अब ये छोटे विचारों में नहीं, इसलिए आप में से जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, मैं सभी को कहूंगा एक बात और नोट कर लो अंडरलाइन करके, बाबा ऊपर से अपने अमूल्य रत्नों को कई बार देखता है, कहाँ है, कहाँ माना जगह नहीं, किस स्थिति में है। जो भी अपने को बाबा का अमूल्य रत्न समझे वो ये भी समझे कि बाबा की नजर मुझ पर है, वो मुझे कुछ बनाना चाहता है। और जरा सोच ले, अब लिख के पूरा करो, फिर सोचना है, जरा सोच ले, अब सुनाने वाला हमें बहुत महान बनाना चाहता है, बनाने वाला और बनने वाले भी यदि वैसा ही महान बनना चाहेंगे तो महान बनने में देर नहीं लगेगी। बनाने वाला और बनने वालों की इच्छा पैरेलल हो जाए, समान हो जाए, बस देर नहीं लगेगी। इसमें अंतर हो गया है बहुत बड़ा, इसको हमें समानांतर करना है, करेंगे निश्चित रूप से। आप बहुत अच्छे संकल्प लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ से जाएंगे तो वैसे नहीं जाएंगे जैसे आए थे। आपको ये बात पसंद आई होगी, जिनको बड़े काम करने हैं उन्हें छोटे विचार नहीं रखने चाहिए। मुझे मान नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं गया, देखा मेरी तो सुनते ही नहीं, ये विचार छोटे हैं, इनसे ऊपर उठना है। कुछ अनुभव भी सुनाता चलो बीच बीच में। एक माता ने फोन किया, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मैंने पूछा ज्ञान में कब से, 5 साल से। तुम्हारा युगल भी ज्ञान में है, फिर दुखी क्यों हो? कहा वो मेरी एक भी नहीं सुनता। समझ गए आप, दुख का कोई कारण नहीं है, पर बहन जी चाहती है पति वही करे जो मैं कहती हूँ, यह है दुखों का कारण। मैंने कहा ये तो कोई कारण ही नहीं है। सोचो अगर बाबा भी यही सोच ले, ये मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ इनसे, अब नहीं जाऊंगा इनके पास, चलेगा काम? मैंने कहा तुम जिस दिन ये संकल्प छोड़ दोगी, जो मैं कहूँ वही पति करे, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। उसे स्वतंत्र छोड़ो ना, छोड़ दो स्वतंत्र, वो कोई बुरा थोड़ा ही है। मैंने पूछा बुरी आदतें हैं, बुरा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट क्लास है ज्ञान में। फिर मैंने कहा तुम ही परेशान हो, मनुष्य में ये आदत है, कईयों में, मेरी बात का बुरा ना मानना, कई बहनों में विशेष, पति वही करे जो मैं कहती हूँ, पत्ता भी घर का मेरी आज्ञा के बिना हिलना नहीं चाहिए। तब मैं कहता हूँ भगवान ने तो मना कर दिया, मैं नहीं ये काम करता। लोग कहते थे ना पत्ता पत्ता भगवान की इच्छा से हिलता है, पर कई बहनें जरूर कहती हैं वो काम बहनों ने ले लिया, आप ही ये नहीं लेना है। अब जरा मेरे साथ चिंतन करें, संगम योग महान भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुआ है, हम क्या वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? चलो गहन चिंतन में, स्वचिंतन करें मधुबन में, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए? और हर एक बाबा का बच्चा समझ ले, आप यहाँ आकर बहुत अच्छी तरह अपने पर दृष्टि डालना, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं अगर हम चाहें उससे चार गुना कर सकते हैं। शर्त एक ही है केवल, क्या कहा मैंने, अगर हम चाहें। हर एक के पास बहुत टाइम है, चार घंटे आराम से स्पेयर किए जा सकते हैं। एक सुंदर प्लानिंग की जरूरत है। मैं कुछ धारणाएं आपके ध्यान में देना चाहता हूं श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। छोटी धारणाएं हैं पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहली, कईयों में नेचर होती है बातों को पकड़कर रखने की, दुखों को भी पकड़कर रखने की। 10 साल पहले कोई दुख की घटना हो गई थी, उसको पकड़ के रखा है, दुख ले लिया है, इतना गहराई तक उतार लिया है कि भगवान का दिया हुआ सुख भी बाहर चला जाता है, छोड़ना है उसे। कोई बात जीवन में हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, बुरा व्यवहार हुआ है, अपनों ने धोखा दिया है, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, कईयों के साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अब उसको याद करने में फायदा या छोड़ देने में? छोड़ दो बस, और उन सबको क्षमा कर दो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। अगर वो बुरा न करते तो आप बाबा के पास न आते। बहुत आत्माएं दुखी होकर भगवान के पास आ गई। आजकल तो सभी दुखी होकर ही आ रहे हैं, लेकिन अपने को चेंज अवश्य करना है। एक और कहानी सुना दूं? पूछ लेता हूं आज्ञा माताओं की, ऐसे नहीं मुझे कहें क्या कहानी सुनाने लगे। मेरे को फोन आता है तो मैं पूछता नहीं तुम कौन हो, ना मुझे जरूरत है, मुझे क्या लेना देना कौन क्या है, मेरा तो काम है मदद कर देना लोगों को। अभी अभी एक बहन का फोन, मेरा पति से डाइवोर्स हो गया, उसकी दूसरी शादी भी हो गई, मैं ज्ञान में भी हूं, पर अब मैं चाहती हूं फिर से उसी के पास चली जाऊं। सोच लो आप, देखो क्या है इसमें, इसे बचना है हमें, इसलिए आपको सुनाया। केवल मैंने उसको कहा अरे ज्ञान मिल गया, कहा वह डाइवोर्स लेके मैं ज्ञान मिल गया, मैं अपने घर में हूं, सुखी सुखी भी हूं, क्यों जाना चाहती है वो तो अलग बात है। मैंने कहा भी इस ज्ञान का सुख तो लो। कहा नहीं मुझे ये बता दो मैं क्या करूं तो फिर से उसके पास चली जाऊं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं तुम उसके पास जाके जो दूसरी आ गई उसको निकलवा दोगी, ये भी तो संभव है। तो मैंने उसे एक ऐसा काम दिया जो उससे होगा नहीं, क्योंकि मैं उनके घर को दोबारा तोड़वाना नहीं चाहता। मैंने कहा रोज 4 घंटे योग करो 3 मास तक। सुनते ही कहने लगी मेरा तो योग लगता ही नहीं। मैंने कहा तो वहां जाने का संकल्प छोड़ना पड़ेगा आपको। बातों को पकड़ कर नहीं रखना है, अभी छोड़ दो, छोड़ दो पास्ट को, बुद्धि का प्रयोग करो। सभी बुद्धिमान हैं बाबा के बच्चे। जो कुछ अब तक हो गया बुरा गया, अब भगवान के पास आ गए, वो बुरा न होता तो ये भी न होता। अब थैंक्स दो जिन्होंने आपको कष्ट दिया, सुखी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो हो सकता है, क्षमा कर सकते हैं माताएं या नहीं? इससे तो बदला लेंगे ही, कर सकती हैं क्षमा, जो क्षमा करे वही महान। दूसरी बात मैंने कह दी है आपको, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। थोड़ा अपने को ऐसा सेट करो कि बहुत सोचने की आदत न रहे। ये बहुतों में है, इसलिए छोटी समस्याएं बड़ी दिखाई देती हैं, होती नहीं है, बड़ी दिखाई देती हैं। अब जो मैंने उदाहरण दिया माता का, ये चाहे तो अपने भाग्य को बहुत महान बना सकती है, लेकिन फिर इसे इच्छा हो रही मैं वहीं जाऊं, ये माया है बहुत बड़ी, इसको पहचानना है हमें। तीसरी धारणा, उन बातों को एक्सेप्ट कर लें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अच्छी तरह चिंतन कर ले अपने जीवन में, संसार अब घोर स्थिति की ओर जा रहा है। आप सब जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा कठिनाइयां कहां हो रही हैं मनुष्य को? संबंधों से, संबंधों की कड़वाहट ही आजकल जीने का सुख नहीं लेने दे रही है। इसलिए इस कड़वाहट को मिठास में बदलना है, झुकना अच्छा। नहीं तो ऐसी ऐसी परिस्थिति लोगों की है, न वो कर सकते, न छोड़ सकते, न ले सकते, दुविधा में फंस गए हैं। अच्छे अच्छे लोग, आज एक और फोन था, मैं आज फोन खोल दिया, मैंने कहा बहुत दिन बंद रखा है, आया फोन बहन का, मेरे भाई की शादी हुई, भाभी इतनी तेज तराक है, हमसे संबंध नहीं रखती, अपने घर से रखती है, दोनों नौकरी करते थे, 1 लाख मिलता था, दोनों को नौकरी छुड़वाई, अब हमारे घर में आ गई, माँ बाप को और मुझे कहती है तुम निकलो यहाँ से, मैं पति और हमारा परिवार रहेगा, अब क्या करें हम, तुम निकलो। अब बेचारे माँ बाप, उनको एक ही लड़का, सोच सकते हैं ना उसकी दुविधा। कितने प्यार से मैंने कहा, आपकी माता जी ने बड़ी कामना की होगी ना बहू का मुख देखूं, अब अच्छी तरह देख लो, दहेज भी बहुत आएगा, अब संवारो दहेज को, ज्ञान में थे ना 20 साल से ज्ञान में माँ बाप दोनों। उन बातों को स्वीकार करना है जिनको बदला नहीं जा सकता। कर लो सभी अपने अपने जीवन में उन चीजों को स्वीकार जिनको बदल नहीं सकते, और चित्त को शांत कर दो। मैं आप सबको कहूंगा, आप संगम पे सभी सुखी हो जाएं बाबा के बच्चे, क्योंकि कुछ महान आत्माओं की अब भगवान को जरूरत है पड़ेगी। मैं तो ये चैलेंज से कहना चाहता हूं, आप में से, कानपुर जोन वालों में से 10 महान आत्माएं चाहिए भगवान को, केवल 10। आप भी यहां बैठे और बहुत आए भी नहीं हैं, केवल 10। कैसे? जो महान योगी हों, जो बहुत पवित्र हों, जो दूसरों के दुख हर सकें, जो संसार को विघ्नों से मुक्त कर सकें, जो सबको मुक्ति का दान दे सकें। मैं हंसी में एक बात कहा करता हूं, क्योंकि मुझे याद है बाबा के साकार के महावाक्य, और वो अब प्रत्यक्ष होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी भगवान के महावाक्य तो सत्य हैं ही। बाबा ने कहा था, विनाश काल आते आते ये संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, उसकी ओर ये संसार बढ़ रहा है। अब देखो ये जो मैं कहानी सुनाई, माँ बाप ये जरूर मेंटली बेचारे बेकार हो जाएंगे, ना बच्चे को छोड़ सकते, उन्हें खिलाना पड़ेगा, दोनों की नौकरी थी 1 लाख रुपए, दोनों को खिलाना है, और वो कह रहे निकलो यहाँ से, लड़का भी पत्नी के साथ हो गया, माँ उसके लिए कुछ नहीं है, वो बेकार है, वो कहता निकलो यहाँ से जल्दी, घर मेरा है, वैसे भी तो तुम्हें मुझे देना ही था ना ये घर, मैं तुम्हारा लड़का हूँ, अब तुम निकल जाओ, क्या होगा इनको, बेचारे बेकार हो जाएंगे। तो मैं हंसी में एक चीज कहता हूँ, है हंसी की लेकिन बहुत गुह्य है। 2020 आते आते संसार के आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे, इसलिए कानपुर जोन से 10 महान आत्माएं चाहिए भगवान को, जो अपने घर में बैठकर सबको सुला दें, सो जाओ, निकलेंगे, निकालेंगे, लेकिन वो जो व्यर्थ से मुक्त हों, वो जिन्होंने अपने अंदर योग की शक्ति भरी हो। कई लोगों का तो संगम युग भी ऐसे ही बीत रहा है, 40 साल हो गए लड़ते लड़ते ही आ रहे हैं बेचारे, कभी माया से, कभी साथियों से, कभी घर वालों से, लड़ते लड़ते ही जीवन बिता दिया, उनके पास कुछ नहीं है। तैयार करो अपने को, माताओं को, अपने घरों को महान तीर्थ बनाना है। बोलो कौन कौन बनाएंगी, सोच लो आगे बनाने की विधि भी है। मैं छोटी सी विधि बताता हूं जो पॉसिबल है। 20-20-20 मिनट तीन बार योग कर देना अपने घर में। देखो केवल एक घंटे की बात है, 20-20 मिनट, लेकिन बहुत माताओं से ये भी नहीं होता। जो कर दे उनका घर महान तीर्थ। पहले 20 मिनट घर में शांति के वाइब्रेशंस, दूसरा पवित्रता के वाइब्रेशंस, तीसरा शक्तियों के वाइब्रेशंस, घर महान तीर्थ बन जाएगा। छोटा सा काम है ये, और आपके घर में समस्याएं नहीं रहेंगी, आपके बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे, आपके काम धंधे निर्विघ्न चलेंगे। इससे अच्छा के धंधों में विघ्न आ जाए और आपको नींद ही ना आए, योग कर दो तीन बार। विद्या बहन आ गई ना, मैंने बहन जी, विद्या बहन, मैंने 10 आत्माओं का आह्वान किया बाबा की ओर से। आप अरे वाह, बहन जी ने डबल बढ़ा दिए, वेरी गुड। मैं तो कहता हूं सब निकल जाए, हैं? एनी टाइम, वो आपको निश्चित करना है। कोई भी 20 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सब मैंने सारे जोन के लिए कहा, कम से कम यूपी वालों को तो आप सुला सको रात को, सारी यूपी को। वहां वैसे भी झगड़े ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही होंगे। एक ये अभ्यास, दूसरा हमारे घर में व्यर्थ को कोई स्थान नहीं, पक्का कर दो ये। बहुत बड़े काम करने हैं, क्या होगा, लोग आपके घरों में आएंगे और कहेंगे हमें 10 मिनट अपने घर में बैठ जाने दो, बस फटा जा रहा है दिमाग, हम शांत हो जाएंगे, हमें अपने घर का एक गिलास पानी पिला दो, हमारा चित शीतल हो जाए, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमने सुना है आपने भगवान को देखा है इस जीवन में, आप बहुत महान हो, सिर पे हाथ रख दो हमारे। और आपने हाथ भी रख दिया और आपका हाथ भी गर्म हो गया उनके सिर से, तो क्या होगा, सोच लो। करने चले थे उनका सिर ठंडा। इसलिए बहुत अच्छी योग युक्त स्थिति चाहिए। इसलिए चिंतन कर लो, वेल सेटल्ड कर दो अपने को। संगम युग का शेष समय प्रभु मिलन में बिताएंगे। यहां आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल ही जाएंगी। बाबा मेरे साथ है ये स्वमान, ये भी योग हो गया। घर को तीर्थ बनाने के लिए अपने घर में माताएं पहले 5 बार बाप दादा का आह्वान करेंगे, करते होंगे कई, 5 बार बुला लेना बाबा को। ये बहुत पावरफुल योग है। अभी हम यहीं से बुलाएंगे और आप महसूस करना ये कितना पावरफुल योग अभ्यास है। और ये धारणाएं जो मैंने आपको कही, छोटी बातों को पकड़ कर नहीं रखना है। ये ऐसी सुंदर धारणा है, अपनी मेंटलिटी को, अपनी नेचर को ऐसा सरल बना दें जो कल तक हो गया भूल गए, बहुत अच्छा रहेगा। उनका चिंतन ही ना हो, हम उन्हें याद ही नहीं करेंगे तो वो विस्मृत हो जाएंगे, तब हमारी स्थिति अच्छी होगी। नहीं तो कईयों के साथ क्या हो रहा है, सवेरे अच्छा योग कर लेते हैं, मुरली तक अच्छा होता है, सारा दिन बाह्य मुक्ता के कारण वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसे बचना है सभी को। पांच बार बाप दादा का आह्वान चलो अब करते हैं, और आह्वान करेंगे अपने अपने घरों में। बुद्धि ले चले परम धाम, महाज्योति, प्यार से निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर, खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर अपने इस घर में आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। उतरते देखो नीचे, सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में आ गए। अब दोनों नीचे आ रहे हैं, आ गए हमारे घर में। बाप दादा खड़े हैं घर में, उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। हमारा पूरा घर उनकी तेजस्वी किरणों से भर गया है। बाबा एक एक चीज को दृष्टि दे रहे हैं, पूरे घर में चक्र लगा रहे हैं। उनकी लाइट, उनकी शक्तियों से हमारा घर भरता जा रहा है। ओम शांति। ऐसे भाई लोग भी घर में, ऑफिस, दुकान में बाबा को बुलाया करें। विनाश काल में ये खूब अनुभव होंगे, बाबा आओ। और आ गए, और बाबा की उपस्थिति माना कोई झंझट नहीं, कोई डर नहीं, कोई अनहोनी नहीं। प्रकृति भी अगर विनाश करती आ रही है तो आपके पास आते ही शांत हो जाएगी। विनाश काल की छवि के बारे में बाबा ने कई बहुत गुह्य बात सुनाई हुई है। जिनके पास साइलेंस पावर बहुत होगी वो प्रकृति को भी शांत कर सकेंगे। साइलेंस पावर का अर्थ है, साइलेंस पावर बहुत सुंदर शब्द है, जब मन साइलेंट हो जाता है तो उससे इतनी पावर जनरेट होती है, पैदा होती है, जो इस संसार की सभी चीजों पर भारी होगी। तूफान चलने लगा बहुत तेज, मनुष्य भी उड़ने लगे, पेड़ पौधे उखड़ के उड़ने लगे, गाय भैंस, आपने सुना हो उड़ीसा में जब तूफान आया था बहुत साल पहले, 260 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक भरे भरे उड़ गए थे, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, कारें तो पता नहीं कहां चली गई थी, पेड़ों पे टंगे हुए थे सब। ऐसा सीन हो जाए 5 मिनट, कितना भयानक विनाश होगा। तब कुछ महान आत्माएं जो योगी हैं प्रकृति को कहेंगे श्यांत, और तूफान शांत हो जाएगा। विनाश तो होना ही है, पर उस टाइम उसे शांत करने की जरूरत होगी। इसलिए भविष्य के अपने महान कार्यों को जानकर सभी बहुत अंतर्मुखी हो जाएं और अपने स्वमान को बहुत बढ़ाएं। स्वमान के फायदे जान लें, व्यर्थ संकल्प स्वमान के अभ्यास से समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा, स्वमान से बहुत सम्मान मिलता है। परिवारों की सभी समस्याओं का समाधान स्वमान में है। आप अपने परिवार में अभ्यास करते रहो, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं इष्ट देवी हूं। देखो परिवार आपके पीछे पीछे आता है। दूसरी भी चीज है, अनेक समस्याओं का समाधान, जो आत्माएं देह से न्यारे हैं वो विश्व के प्यारे बन जाते हैं। आपका घर में कोई विरोध ही नहीं कर सकता अगर देवान से न्यारे और स्वमान में स्थित होने का अभ्यास करें। स्वमान के बारे में एक और सुंदर चीज, इससे अभिमान नष्ट हो जाएगा, जो बड़ी उपलब्धि है। स्वमानधारी आत्मा ही सहज योग्युक्त हो सकती है। प्रकृति भी स्वमानधारी आत्मा को सम्मान देती है। बाबा का ये महावाक्य है, ध्यान से सुन लेना। जो आत्माएं स्वमानधारी हैं, उन्हें प्रकृति और भगवान दोनों ही सम्मान देते हैं। व्यर्थ से भी मुक्त, क्रोध अहंकार से भी मुक्त हो जाएंगे हम, हमारे पुरुषार्थ की यात्रा बिल्कुल सरल हो जाएगी। इसलिए सभी अपने अपने स्वमान चुन लें, पांच बस, जिन पर आपको मास्टरी करनी है। कोई भी पांच स्वमान जिन पर आपको एक्सपर्ट होना है, जो आपका जीवन बन जाए। स्वमान हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे स्वमान हैं, पर पांच, किसी को सात दिन के लिए सात चाहते हो सात कर लो, लिस्ट तो लंबी है, पर बहुत ज्यादा लेने से फायदा नहीं होता। स्वमान के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, स्वमान को पहले स्वीकार करना है। बाबा ने कहा तुम महान आत्मा हो, कई ब्राह्मणों का क्या होता है सुनते ही, बोलो क्या होता है? बाबा ने बैठकर कहा तुम सब महान आत्माएं बैठी हो, और कई ब्राह्मण क्या सोचेंगे तुरंत, बाबा तो ठीक कहता है पर हम तो महान नहीं हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं। क्या गरीब महान नहीं हो सकता? महानता का गरीब से कोई नाता ही नहीं। गरीब बहुत महान हो सकते हैं, बिना पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं। मैंने देखी है माताएं ऐसी, बिना पढ़ी लिखी और बहुत बुद्धिमान, सारा गांव राय लेने फैसले कराने उनके पास आता है, और इतनी भावना है जो उसने कह दिया वह सच। लड़ रहे हैं दो भाई, तुम ये ले लो तुम ये, ठीक है, नतमस्तक होके फैसला स्वीकार, बिना पढ़ी लिखी माताएं। तो पहली बात है स्वीकार करना। जब भगवान कह रहा है तो सत्य कहता होगा ना। हम यहां अपनी बुद्धि का एक्स्ट्रा प्रयोग कर देते हैं, मैं तो महान नहीं हूं, तो क्या भगवान गलत बोल रहा है? हम महान हैं, जो भगवान के पास आ गए, जिन्होंने प्योरिटी अपना ली, वो महान। दूसरी बात, उस बात का नशा हो जाए, और तीसरी बात, उसको कई बार स्मृति में लाएं। तीन कदम हैं ये, इन पे सभी बहुत ध्यान देंगे तो स्वमान की स्थिति बनती जाएगी। स्वमान से विचार महान होते हैं, दृष्टिकोण महान होता है। आपके घरों में यदि संघर्ष है, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मैं एक महान आत्मा हूँ, और दूसरा व्यक्ति जिसे लड़ाई है वो भी महान है। पर ये सोचना जरा मुश्किल है, तब कहेंगे तो बहुत लड़ता है, इससे खराब कोई नहीं, इसने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया। पर अगर आप ये अभ्यास कर दो, आखिर वो भी भगवान का बच्चा महान आत्मा है, तेजी से परिवर्तन हो जाएगा। स्वमान का एक बहुत बड़ा फायदा, अब ये बुद्धिमानों के लिए, बार बार जिस स्वमान का आप अभ्यास करते हैं आत्मा से, वैसे ही वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते हैं, जो हमें हेल्दी करते हैं, स्वस्थ, जो हमारे ब्रेन को एनर्जेटिक करते हैं, बहुत ताकतवर। आप बार बार सोच रहे हैं मैं एक महान आत्मा हूं, गुड एनर्जी आत्मा से ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं आप, इसका बहुत ध्यान देना है। सभी अपने अपने पॉइंट्स चुनेंगे, अभी चुन लो, मैं कुछ सुना देता हूं या आप सुनाएंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विजय रतन हूं। मैं फास्ट बोल रहा हूं जानबूझ के, लिख सकते हैं आप एक ही सारे में लिख लो। मैं विजय रतन हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इसमें मुझे बहुत अच्छे शब्द लगते हैं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, मैं इष्ट देव देवी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, पद्मा पदम भाग्यवान हूं। इस सृष्टि में बहुत धनवान हूं, हैं या गरीब बैठे बाबा के बच्चे, बहुत धनवान हूं। मैं प्रकृति की मालिक हूं, बाप समान हूं, पूर्वज हूं, जान का नूर हूं। ये बहुत सुंदर स्वमान है हमारे, बाकी लिस्ट तो लंबी बनती है, लेकिन ये बहुत सुंदर है। मैं राज ऋषि हूं, सवेरे उठकर अगर कोई एक बार इनका अभ्यास कर ले तो जीवन में बड़ी चेंज आ जाए। आपने सुना होगा, मैं एक चीज कुछ सालों से कहता आता हूं, जब से मैंने वो जानी है, कि सवेरे आंख खुलने पर पहले 10 मिनट हर मनुष्य के लिए बहुत सुंदर समय होता है। इस 10 मिनटों को जो व्यक्ति सुंदर ढंग से रोज व्यतीत कर ले, उसके जीवन में कुछ भी पाना शेष न रहे, उसके जीवन में कोई भी समस्या ठहर न पाए, उसके परिवार में आपदाएं आएंगी ही नहीं। 10 मिनट, और मान लो आप सवेरे उठे और भूल गए, 5 बजे करो, 6 बजे करो, लेकिन ये तब, शर्त इसके पीछे एक ही है कि हमारा मन शांत हो। दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, मन शांत हो। जब मन शांत होता है तो अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। अब हम कैसे इसका अभ्यास करेंगे, मैं आपके सामने एक विधि रख देता हूं, उसका अब हम अभ्यास ही करते हैं, और आप रोज ऐसा कर लेना और देखना जीवन की दिशा दशा सब बदल जाती है। रेड लाइट, बिल्कुल मग्न होकर बैठेंगे सभी, और ऐसा ही महसूस करेंगे हम अमृत वेले बैठे हैं। चलेंगे एक सेकंड में आकाश के ऊपर, अपने चारों ओर देखें, सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया, सामने खड़े हैं बाप दादा, बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। क्लियर दिखाई दे आपको बाप दादा, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से सुखदायी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। अब बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, मेरे द्वारा चुनी हुई महान आत्मा हो। हम स्वीकार करते चले एक एक को। भगवान बोल रहे हैं तुम साधारण नहीं हो, महान हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। तुम शिव शक्ति हो, ईश्वरीय शक्तियों से सुसज्जित हो, मास्टर सर्व शक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना होगा। तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हारा एक एक संकल्प जग का कल्याण करता है। तुम विजय रत्न हो, कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है। तुम तो विजयमाला के ऐसे मन के हो जिन्हें स्मरण करने से भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तुम इस जहान के नूर हो, सृष्टि के श्रृंगार हो, परम पवित्र हो, प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारे वाइब्रेशंस की, पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे एक प्यासा मनुष्य पानी का। तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम्हें पाकर प्रकृति धन्य धन्य हो गई है। तुम पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। तुम वही हो जिनकी भक्त लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तुम तो बाप समान हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेते हम नीचे। ओम शांति। एक बार कर लेना रोज, स्थिति बहुत महान बन जाएगी। अनेक स्वमान याद आएंगे और जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाती है। अब आप सब आगे प्रैक्टिस करना, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। गीत बजाएंगे। चलें अब सभी इस तरह योग में बैठेंगे। मैं मास्टर ऑल माइटी, माताएं बहनें सभी स्वरूप में बैठ जाएं। मैं अष्ट भुजाधारी हूँ। भाई लोग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
ओम शांति। हम सभी भाई साहब का दिल से धन्यवाद अदा करते हैं जो स्वमान की शक्तिशाली स्थिति में हम सभी को स्थित करा दिया। ओम शांति।